الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں اور وہ ہے غزوہ بدر. یعنی غزوہ بدر جو ہے نا 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے. یہ ایسا معرکہ تھا جس نے مطلب تاریخ کو موڑ دیا اور مسلمانوں کی جو نوزائیدہ طاقت تھی جس پہ قریش مکہ کی بری نظریں تھیں اور دوسرے کفار بھی ظاہر مطلب اس کے خلاف تھے, تو گویا کہ ان مٹی بھر جان نثاروں کے اوپر ایک منظم حملہ ہوا جس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ساری مطلب جو ہے نا جان نثاروں کی فوج جو ہے نا وہ اس میں ختم نہ ہو جائے. لیکن اللہ جل شانہ نے بالکل عمومی اسباب کے برعکس معجزانہ طور پر صحابہ کرام کو فتح نصیب فرما دیا. تھوڑا سا اندازہ کر لے کہ یعنی ان کی جو آپس میں ریشو ہے وہ ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کوئی کس طرح مطلب جو ہے نا وہ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو ہے نا مطلب اس طریقے سے میدان میں نتیجہ جو سامنے آیا وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ اس میں تاریخی طور پر بہت زیادہ یعنی مرگو ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ بہت بڑی یعنی ایک قسم کی مختلف انداز میں نتیجہ سامنے آیا. اب اندازہ کر لیں کہ مسلمانوں کے 313 جان باز تھے جن میں 82 مہاجر تھے اور 231 انصار تھے, اور جو غیر مسلموں کا فوج تھا وہ 1000 مطلب جو ہے نا افراد پر مشتمل تھا. صرف تعداد کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ جو اسلحہ تھا تو مسلمانوں کے پاس جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف 6 وہ تھے اور جو ہے نا مطلب جو ہے نا 8 تلواریں تھیں, جبکہ جو غیر مسلم طاقتیں تھیں وہ 600 باقاعدہ جنگی سپاہی اور سب مسلح. ہاں جی, اور اونٹ جو ہے نا وہ جو ہے نا مطلب مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے صرف, اور غیر مسلم جو فوج تھی اس کے پاس 700 اونٹ تھے. دو صرف گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس اور غیر مسلموں کے پاس 300 گھوڑے تھے. گھوڑوں کی حساب آج کل آپ ٹینکوں کی طرح لے لیں تو دو ٹینک 300 ٹینکوں کا مقابلہ ذرا مطلب کیسے. ہاں, لیکن جس وقت جنگ اختتام پذیر ہو گیا جہاد مطلب ہوا تو 14 مسلمان شہید ہوئے جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار شہید ہوئے, جبکہ کفار کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. ہاں جی, اور اس میں جو سرکردہ جو لیڈر تھے جو کافروں کے وہ مارے گئے, جیسے ابو جہل ہے, عتبہ ہے, ولید ہے, یہ مطلب امیہ بن خلف ہے, یہ جو ہے نا مطلب یعنی بڑے بڑے سردار تھے ان کے, جن نام تو نام اور جو ہے نا وہ سردار تھے جن پہ کفار کو بڑا ناز تھا وہ مارے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تیاریوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا جائے. تو ظاہر مہاجر بھی موجود تھے اور انصار بھی موجود تھے, تو صحابہ کرام نے بڑی عجیب انداز میں پرجوش تقریریں کی اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ مجھے نا مطلب آپ اور آپ کا رب لڑیں اور ہم تو ادھر بیٹھے ہیں. ہاں جی, ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, بائیں بھی لڑیں گے, آپ کی بھی پیچھے بھی, اور جو ہے مطلب یہ کہ بعض نے کہا کہ ہم دریاؤں میں بھی کود سکتے ہیں. مطلب یہ کہ گویا کہ ہر طرح سے مطلب جو ہے نا انہوں نے اپنے جوش کا یقین دلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قافلے پہ یعنی جس کو کہتے فتح یا لشکر کے اوپر فتح ہوگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ इनके बड़े बड़े लोग यहाँ यहाँ मारे जाएंगे, उनकी जगह बताई, और बाद में बिल्कुल वही जगह थी जिन पे जो है ना वो लोग मारे गए। तो ये है कि इस पर जो है ना वो मुसलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर लेके जो है ना बाकायदा शफबंदी फरमाई, और ये है कि इब्तिदा इस तरह हो गई जो अरब का दस्तूर था कि तीन जो है ना वो कुरैश की तरफ से सरदार आए, उतबा बिन रबिया और जो है ना उसका भाई भाई शेबा बिन रबिया, और जो है ना मतलब ये है कि वलीद बिन रबिया और शेबा बिन वलीद, ये मतलब तीन जो है ना मतलब ये कि वो आए इधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। पहले अंसार बड़े जोश में थे, आगे बढ़े तीन, लेकिन उनने कहा कि हमारा लड़ाई आपके साथ नहीं, हमारी लड़ाई मुहाजिरों के साथ है, वो आ जाए। तो फिर आप सब ने फिर हमजा रदलानो और जो है ना मतलब ये कि अली रदलान और जो है उबैदा रदलान उनकी तश्कील फरमाई, तो मैदान में बाहर आ गए। तो हमजा रदलान ने तो फौरन उतबा मेरे रबिया को जहन्नम रसीद कर दिया, और जो मतलब अली रतलान ने अपने मद मुकाबल वलीद को जहन्नम रसीद कर दिया, लेकिन उबैद रतलान पे उनने शेबा ने वार किया तो वह जख्मी हो गया। इतने वली रतलान फारे हो गए थे तो उसके मदद को पहुंच गया, उसने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। तो इस तरह उनके तीनों गोए के मारे गए। ये गोए कुफार के लिए बहुत जिसको कहते हैं ना यानी डरावनी बात थी कि इनके तीनों सरदार यानी एक ही हमले में वो मारे गए। फिर इसके बाद मतलब यह है कि लड़ाई घमसान के रन शुरू हो गया, इसमें अबू जहल भी मारा गया और दो बच्चों के हाथों मारा गया, मुआविज़ और मुआज़ ये उनके हाथों मारा गया। तो वो जो है ना मतलब यह है कि और मतलब जो इनके उमैया बिन खल्फ थे वो भी मारा गया। तो 70 अफराद जो उनके मारे गए और फिर 70 कैदी बना ले, तो ये बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त थी। तो इस वजह से एक तारीख को मोड़ने वाला जो है ना मतलब जो है ना वो था। तो ये इस पर जो है ना मतलब अरबों के ऊपर मुसलमानों की ताक बैठ गई, और जो है मतलब एक आइंदा यानी गोया कि सुरखरुई के साथ मुसलमान उनके साथ मुकाबला करते रहे। बहरहाल ये जान निसारो जान निसारी का एक कपूर ही अजीब यानी वाक़ है। इस वजह से इस वाक़े का खामोशी से गुजर जाना ये मतलब ये मुमकिन नहीं है कि हम इस पर कोई बात ना करें, और जो मतलब है कि इस तरह खामोशी के साथ मतलब ये गुजर जाए, ये मुसलमानों के लिए एक रहनुमा मतलब जो है ना वो वाक़े है, और इससे जो है मतलब मुसलमानों का ईमान ताज़ा होता है। इससे पता चलता है कि मुसलमान अगर अपने तरीके में मुखलिस रहे, वो अंतुमुल आलोन इन कुंतुम मोमिनीन, यानी जो फरमाया गया ना कि तुम ही कामयाब होगे, तुम ही जो है ना वो गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, मतलब यह है कि ईमान को फतह होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा ईमान मजबूत हो तो कोई हमारे सामने नहीं ठहर सकता। तो मुसलमानों के अंदर इस जज्बे को यानी मुर्दा नहीं होना चाहिए, और ये तारीख से जो लोग सबक नहीं सीखते तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ये तारीख से सबक सीखना चाहिए कि मुसलमानों की तारीख क्या है। मुसलमानों की तारीख कसरत पे नहीं है, मुसलमानों की तारीख ईमान की कुव्वत पर है, यानी ईमान के ज़ोर से मुसलमानों को फतह हुआ है, कसरत के ज़ोर से कभी भी मतलब ये वाला मसला नहीं था। बल्कि जब कसरत हुआ था बनू हवाज़न के कबीले के मुकाबले में, जिस वक़्त कसरत मुसलमानों को हासिल था तो उनके दिल में सिर्फ ये बात आई थी कि हम जो है ना मतलब है कि जब कलील थे मतलब किल्लत में थे तो उस वक़्त फाते थे, तो अब तो हम कसरत में हैं। तो मामला नतीजा उल्टा हुआ, क्योंकि उन लोगों ने पत्थर ऊपर बांधे हुए थे पहाड़ों के ऊपर, और वो पत्थर जो है ना मतलब है कि उन्होंने छोड़ दिए, तो बस वो मुसलमानों के ऊपर जो डड़ा धड़ आने लगे तो मुसलमान आगे पीछे हो गए। सिर्फ आप सलम चंद हजरात के साथ बाकी रहेगा, आप अन नबी उलाकब अरब अब्दुल मुतलिब इसका रिस पढ़ते हुए कपाड़ की तरफ जाने लगे, और फिर मुसलमानों को भी हो गया तो वो भी आगे पर गुमसान का रन हुआ और शिकस्त उनको दी। लेकिन बहरहाल इब्तदा में उनको बहुत खतरात पेश आए। तो इसका मतलब ये कि मुसलमानों को अपनी कसरत पे नाज नहीं, असबाब ज़रूर इख्तियार करने चाहिए, असबाब तो हुक्म है, वाहिदुल्लाह मस्तता तुम असबाब ज़रूर इख्तियार करना चाहिए, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है, भरोसा अल्लाह ताला पर होना चाहिए। तो ये जो है ना मतलब ये जो बदर का वाक़या है, ये माशाल्लाह इसका वाक्य, इस वजह से जो 313 आदत है ये एक मुबारक आदत है, ये मतलब ये 313 का जो आदत है ये एक मुबारक आदत है। और बताया जाता है कि रसूलों की तादाद भी 313 थी, तो इस तरह जो मतलब ये कि जो ये 313 का आदत बड़ा मुबारक आदत है। इस वजह बाज़ वज़ाइफ में भी इसको मतलब ये लिया जाता है, जैसे हम सलामुन कौले मेरे रहीम की 313 मरतबा बताते हैं, या इस तरह और वज़ाइफ में भी, क्योंकि ये अदद मतलब जो है ना वो असहाबे बदर का अदद है। और ज़ाहिर है हमें दिल से मतलब जो है ना वो दुआ करनी चाहिए कि मुसलमानों की निशाते सानियाँ हों और फिर से मुसलमानों के अंदर वो गैरत ईमानी आ जाए, मुसलमानों को अपने अकदार के साथ जो है ना मतलब चिपकने की मतलब आदत हो जाए। यानी ये जो है ना मतलब ये तुर्की जो सुल्तनत का मसला हुआ था और फिर उसके ऊपर पूरी दुनिया चढ़ाई थी और तुर्कियों को गुलाम बना दिया गया और फिर उसमें अपने गुलाम को बिठा दिया गया अतातुर्क को, तो मतलब ये है कि उन्होंने एक चीज़ को अपने सीने से लगाए रखा, जो वहाँ के मुसलमान थे, खिलाफत को सीने से लगाए रखा, और इसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू की। आजकल के जदीद तरीके से जो कोशिश हो सकती थी उन्होंने की, और आज हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिर मतलब जो है ना इतनी ताकत यानी हासिल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान अगर एक अजीमत के साथ अजमत मतलब अपनी जो मुसलमानों की जो शान शौकत को याद रखें, और जो है ना मतलब ये है कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान से मुसल्लह होकर अगर फिर से जो है ना मतलब ये है कि वो, तो ज़ाहिर मतलब ये दिन दूर नहीं है, ये फिर दोबारा मतलब जो है ये दौर आ सकता है। तो बहरहाल मुसलमानों को अपने जो रजमिया जो मतलब जो है ना वो मारेका है उनको याद रखना चाहिए। ये गज़वाए बदर मतलब जो है ना वो उनमें से मतलब बहुत बड़ी शान वाली गज़वा है, तो इसको हमें याद रखना चाहिए और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए। असल में अल्लाह जल्ला शानू अल्लाह अकबर वसीले के ज़रिए से दुआएं कबूल फरमाते हैं। वो एक बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना वाज़ेह सबूत है कुरान पाक में कि मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जो है ना वो बेमौसम के मेवे आते थे अल्लाह ताला की तरफ से। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कहाँ से मेवे आए, तो उसने कहा कि अल्लाह पाक ने भेजे हैं। अब इससे जो है ना मतलब देखे ज़करिया अलैहिस्सलाम चूँकि पैगंबर थे तो फ़ौरन वो पैगंबराना ज़ौक कि फ़ौरन नतीजे पे पहुँच गए, और उसने भी अल्लाह ताला से बेमौसम का मेवा मांगा और वो था ये कि अपने लिए औलाद मांगी, हालांकि बूढ़े थे और बीवी बांझ थी लेकिन बेमौसम तो उसकी मतलब जो है ना अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह पाक ने फौरन ही जवाब भी दिलवाया कि फरमाया गया कि तुझे यहया की बशारत हो। तो अब देखो मांगा तो उस ईमान से उस वसीले को जरिया रख बनाते हुए मांगा, लेकिन असबाब की तरफ जब देखा तो असबाब तो फेल थे। तो फिर कहा क्या कि कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूँ हाँ और मेरी बीवी बांझ है। तो मल्ले जो ने कहा गया कि ऐसे ही अल्लाह पाक करते। हाँ जी, तो बहरहाल यह है कि अल्लाह जल्ला शानों ने माशाल्लाह औलाद दे दी, बुढ़ापे में औलाद दे दी जन मतलब जन यहया अलैहि सलाम की। तो अब यह कि ये वसीला के ज़बरदस्त सबूत है, यानी कि उन्होंने एक वाक़े से जो है ना वो माजी के वाक़े से एक सबक ले लिया, तो हम भी ये ले सकते हैं, हम भी बस बदर के वाक़े के वसीले के ज़रिए से अल्लाह पाक से फिर वो शान और शौकत मांग सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि असबाब को जो हकीकी असबाब है उनको इख्तियार करना चाहिए, ज़ाहरी असबाब को भी इख्तियार करना चाहिए, इस हकीकी असबाब को भी, हाँ जी वो भी इख्तियार करना चाहिए। अब आपके पास बंदूक है ज़ाहरी सबब है, लेकिन उसके अंदर कारतूस ना हो जो उसका हकीकी सबब है, बंदूक तो सिर्फ उसको चलाने का ज़रिया है, अगर कारतूस उसमें ना हो बंदूक में तो आप बंदूक चलाएं तो उसे क्या होगा। हाँ जी असल तो ताकत उसके अंदर है, तो इसी तरीके से असल ताकत तो ईमानी कुव्वत है और असबाब के ज़रिए से वो चलते हैं आगे। तो असबाब अब असबाब गोया कि बर्तन है और जो है ना वो जो उसमें हकीकी जो चीज़ है वो उसका मजरूफ है, तो मजरूफ भी होना चाहिए, ज़र्फ़ भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें अगर हों तो फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से वो मदद आती है। तो ये बात है कि हम लोगों को भी अल्लाह ताला से यही मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला फिर हमें वो शान व शौकत अता फरमाए और फिर अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर चलाए जो साहबा का तरीका था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें हायल हैं, वरना आज भी ये चीज़ हो सकती है। एक ये कि हम अपनी नफ्स की तरबियत कर लें, दूसरा है कि हम अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से साफ़ कर लें, और तीसरा है कि हम अपनी अक़ल को ईमानी अखबार से असर लेने का काबिल बनाएं, यानी ईमानी जो खबरें हैं उससे जो है मतलब यह कि असर लेने के काबिल बनाएं। बस ये तीन काम करने, और ज़ाहिर ये किसी शेख के निगरानी में ही हो सकते हैं। तो मतलब यह है कि अगर हम लोगों ने अपने ऊपर मेहनत की, अपने नफ्स को काबू कर लिया, और फिर यह है कि दिल को साफ कर दिया, अल्लाह ताला की मोहब्बत के ज़रिए से दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया, और फिर यह है कि अपनी अकल को गोया कि असल चीज़ों की तरफ जो है ना मोड़ दिया, यानी ईमानी खबरें जो हैं वो जो ईमान के ज़रिए से हमें पहुँची हैं उसकी तरफ मोड़ दिया, तो फिर हम लोग मुख्तलिफ लोग होंगे, फिर इस किस्म के नहीं होंगे हम। अब देखो ना, जैसे हमने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों के ऊपर जब हमला होगा तो ऐसा होगा कि जिस दस्तरखान के ऊपर कोई चीज़ सजा दी जाए और सबको दावत दीजिए कि आए खाएं, तो मुसलमानों पर हमले की दावत इस तरह दी जाएगी। तो उस वक्त सहाबा किराम ने पूछा, रसूल क्या हम उस वक्त किल्लत में यानी अकलियत में होंगे, कम होंगे? फरमाया नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। तो क्या वजह होगी? तो आप सबने फरमाया कि तुम्हें वाहन हो जाएगा। वाहन क्या है? मतलब मुझे ना दुनिया की मोहब्बत। तो दुनिया की मोहब्बत गंद है, ये हमारे दिल को गंदा कर देते हैं, हमारे और अल्लाह के दरमियान हिजाब बन जाता है, और अल्लाह ताला की मदद आने के लिए भी हिजाब बन जाता है। हाँ जी, लिहाजा इस गंद को दूर करना पड़ेगा। यानी यूं समझ ले कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक से महरूमी दिल की खराबी की वजह से, और शैतान का कुर्ब जो है नफ्स के जरिए से होता है। नफ्स अगर बिगड़ जाए तो शैतान की तरफ चला जाता है, और दिल जब बिगड़ जाए तो अल्लाह पाक से दूर हो जाता है। तो ये गोया कि मतलब ये है कि दो बड़ी चीज़ें हैं, इनको हमें ठीक करनी पड़ेंगी, और फिर जो है ना मतलब इन्हीं दो चीज़ों के ज़रिए से ये नफ्स हमारा काबू में हो जाए, और दूसरी बात यह है कि दिल हमारा साफ़ हो जाए, तो फिर चूंकि रुकावट ख़त्म हो जाएंगी दोनों, तो फिर हमारा अकल भी काम करने लगेगा, और फिर अकल हमारा आखिरत की खबरों से असर लेगा, दुनिया की खबरों से असर नहीं लेगा। उसको ये पता होगा कि मेरे सामने इस वक्त काना नहीं, लेकिन जन्नत में आला दर्जे के काने मौजूद हैं, वो मेरे लिए तैयार हो रहे हैं। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगूई रहमतुल्लाह यही तो फरमाते थे ना, बिल्कुल फाके पे फाके, बादशाह के पीर थे, वक़्त के बादशाह के पीर थे, लेकिन उनके घर में फाके थे। तो जब मतलब बच्चों को बहलाते थे तो बच्चों को कहते थे कि मतलब जनाब वो बस अभी हमारे लिए सारा कुछ तैयार हो रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी सी ज़िंदगी उससे पूरी हो जाए तो बस फिर वहाँ सब कुछ है, यानी इस तरीके से बातें करते। तो ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार था। हाँ जी, तो असल बात यह है कि अगर हम लोग ईमानी खबरों से असर लेने लगे और अपने नफ्स को हम काबू कर लें, शैतान की तरफ न जाने दें, और अपने दिल को साफ कर लें दुनिया की मोहब्बत से, तो फिर हम भी सहाबा किराम के तरीके पे चले जाएंगे। तो इसमें ये वाली बात है कि इस चीज़ को सिर अल्लाह कहते हैं, यानी दिल के साफ करने के अमल को, और जो है ना नफ्स को काबू करने के अमल को, दिल को अकल को जो है ना मतलब सलामती के रास्ते पे आने पे, ये जो तीनों काम है ये सिर अल्लाह कहते हैं इसको। और जब ये हो जाता है तो फिर इंसान सिर्फ अल्लाह पे आ जाता है, और सिर्फ अल्लाह ही है सहाबा किराम के तरीके पर। अब जैसे सहाबा किराम अल्लाह पाक से मदद खींच लेते थे अपने अमाल के ज़रिए से और अपने ईमान के ज़रिए से, बैनी ही इसी तरीके से मुसलमान भी फिर मदद खींचेंगे और अल्लाह ताला की मदद आएगी उनके पास। तो हमें बदर का वाकई यकीन दिलाता है कि अगर हम तब्दील हो गए तो अल्लाह जल्ला शान वही है। हम मतलब जैसे इस मुख्तलिफ हालत में जब हमें वाहन लग गया है, इसकी वजह से हम ख़राब हो रहे हैं, अगर हम इस चीज़ को दूर कर लें और फिर दोबारा से ही मुसलमान बन जाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर वही नतीजे होंगे। अल्लाह ताला मेरे नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اصحاب بدر کے طفیل یا اللہ ہمیں وہی ایمانی قوت عطا فرما دے یا اللہ العالمین، ان کا جیسا نفس قابو میں تھا اس طرح ہمارے نفس کو بھی قابو کر دے، قابو میں ہمارے قابو میں کر دے، ان کا جیسے دل دنیا کے محبت سے صاف تھا اس طرح ہمارے دل کو بھی دنیا کے محبت سے صاف کر دے، اور جس طریقے سے وہ آخرت سے اثر لیتے تھے اور آخرت کے مطابق کام کرتے تھے، تو اسی طریقے سے یا اللہ ہمارے عقل کو بھی یہ راستہ نصیب فرما دے، یا اللہ العالمین اس سے مسلح ہو کر صحابہ کرام کے طریق پر ہمیں گامزن فرما دے، اور یا اللہ العالمین ہمیں ہر گندگی سے محفوظ فرما دے، اور صحابہ قدر بدر کی طرح جس طرح تو نے ان کو فتح مبین عطا فرمایا اس طرح ہمیں بھی کفار پر، اس وقت کے کفار پر فتح مبین عطا فرما دے، مسلمان جہاں جہاں پر بھی دشمنوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ برسر وقار ہے ان کو فتح عظیم عطا فرما دے، اور مسلمانوں کو جہاں جہاں مظلوم ہیں ان مظلومین کی مدد فرما دے، اور ان مظلوموں کے مقابلے میں ظالموں کو اول تو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر ان کو اللہ العالمین ان سے جو ہے نا مطلب مسلمان مظلومین کا انتقام لے لے، اور یا اللہ العالمین حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما دے، اور یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے دعوے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے ابھی پاسن کے معیت پاک میں اپنی دار پاک عطا فرما، اور یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوا، یا اللہ العالمین ہمیں، یا اللہ العالمین ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ العالمین تو ہم سے راضی و سراج پر ناراض نہ ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون.